वीरांदर श्रीमानंदन श्लाघा तक्षुरमितम यह तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप पदाम स्वराधिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अभी तक हमने 19 तक किया था चर्चा, अभी तक हमने चर्चा किया था कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति पहले अगर शुरुआत से देखे तो भगवान अपने अवतार के लक्षण कारण बताए थे, तत्पश्चात फिर कौन लोग उनके पास सबके प्रति समान भाव से वर्तन बिहेव करते भगवान, फिर कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग इच्छा से उनके पास आते तो उनकी इच्छाओं को भी पूरी करते, कुछ लोग देवताओं के पास जाना चाहते तो भगवान उसके भी सहायता करते हैं, और तीन गुणों के आधार से ये प्रणाश्रम का भगवान ने सिस्टम बना दिया, और सब प्रकार के कर्म करते हैं फिर भी कर्म से ऊपर रहते हैं, उनको किसी कर्म की इच्छा नहीं है, और सबके सबके साथ एक समान भाव से बिहेव करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु का वर्षा का एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने। सो इस तरह से भगवान बताना चाहते थे कि कर्म ज्ञान के आधार पर अगर किया जाए, ज्ञान के युक्त होकर किया जाए तभी उसका महत्व है, अन्यथा कर्म का परिणाम बहुत भयानक होता है। हमें कोई अंदाज नहीं है कि हम जो कर्म करते हैं या लोग जो कर्म करते हैं इसका कितना भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। उनके लिए सूट टाई वाले अच्छे कपड़े पहनकर घूमना, महंगी गाड़ियों में परफ्यूम डाल करके भोग विलास करते रहना, इधर उधर देखना है। लेकिन जो मांस खाते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो धर्म के नियमों का तोड़ते हैं, उन लोगों को इसके बाद वाले जन्म में इतना बुरा परिणाम उनको प्राप्त होगा इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन केवल कर्म अगर समझ, ये तो विकर्म की बात हुई, लेकिन सकाम कर्म में भी परिणाम जो है वो तो भुगतना ही पड़ता है। आपने अगर पुण्य कर्म किया तो पुण्य का परिणाम, और पाप होगा तो पाप का परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जब तक कर्म का रिएक्शन आएगा तब तक आपको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका हिसाब किताब जब तक 0-0 नहीं होगा तब तक आपको आगे प्रमोशन नहीं कर सकते, पहले के कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो अभी हम वास्तविक हमारे जीवन में जो कुछ देख रहे हैं वो सब पूर्व जन्म के कर्म का फल, पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों का फल हम देख रहे हैं। उससे बच सकते हैं एक ही उसका तरीका है कि कर्म को ज्ञान से युक्त करके किया जाए। अगर जो लोग ज्ञान युक्त कर्म करते हैं उसको ही मनुष्य कहा जाता है, अन्यथा उसको पशु माना जाता है। ज्ञान पशु में नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं धर्मो ही ना पशु भी समान धर्म ही ना। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। अगर वो चोरी करेगा, कुत्ता अगर आपका जूता चोरी करके चला गया तो आप पुलिस केस करने थोड़ी जाने वाले हो। अगर उसने कोई बंदर कोई भोग करता है पेड़ के ऊपर कहीं पर भी जा करके, तो आप उसको अरेस्ट थोड़ी कर दे हो कि यू डिड रॉन्ग, आपने कानून का भंग किया। नहीं, कर्म का उनको फल नहीं है, कर्म का फल, लेकिन मनुष्य को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उनका तो फल ही है बंदर का शरीर, उनका तो कर्म का फल ही है कुत्ते का शरीर, लेकिन मनुष्य जो है उसको कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अगर वो ज्ञान युक्त कर्म नहीं करेगा, ज्ञान युक्त कर्म करने का अर्थ होता है अनासक्त होकर के कर्म करना, मैं ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं ये समझ कर कर्म करना, फलों के प्रति अनासक्ति विरक्त होकर के कर्म करना कि मैं फल की कर्तव्य के भाव से कर्म करना, ये कर्म ज्ञान युक्त कर्म है। इसलिए भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान केवल कर्म का इंस्ट्रक्शन नहीं देते, जब कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म किए जा कर्म किए जा, भगवद गीता क्या कुछ नहीं, सिंपल कर्म किए जाओ और कुछ भगवान कुछ बताए नहीं, पूरे गीता में एक ही बात बताई कि कर्म किए जाओ कर्म किए। बहुत लोग मिले आज तक मुझे ऐसे, सो वो तो एडवांस लेवल
इससे वाले दुकान पे
कर्म किए जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है तो बोलेगा फल की इच्छा मत कर, लेकिन जनरली यही बोलते हैं लोग कर्म किए जाए, योग कर्म से कौशल कर्म किए जाओ कर्म किए जाओ। ऐसे भगवान इतने मूर्ख तो है नहीं कि कुछ भी करने को बोलेंगे। भगवान जब भी कर्म के विषय में कहा है कि कर्म को करना है तो हमेशा ज्ञान से युक्त कर्म का ही बात हुआ है। विदाउट ज्ञान कर्म अकेला भगवान नहीं कहते, क्योंकि उसका भगवान बताते भी है कि बिना ज्ञान के कर्म करने वाले को परिणाम भुगतना पड़ता है। यह शास्त्र उससे वर्तते काम कारत न सद्य मवा अपनौती न सुखम न परम गति, स्पष्ट बताया ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था वज्रति तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, तो ऐसा भगवान ने स्पष्ट बताया है। सो 20-21-22 में ज्ञान के आधार पर किए गए कर्म के गुण सिम्टम्स कैसे होते हैं उसकी चर्चा आगे की है, उसका पढ़िए। 20
अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।
सी यहाँ पर कहा है हमेशा संतुष्ट और स्वतंत्र रह करके कर्म करता है। फिर क्या लिखा है, परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शंस, फिर भी सब प्रकार के कर्मों में जुड़े होने के बाद भी उसका कोई फल उसको लगता नहीं है। ज्ञानी के पास ये समस्या रहती है, केवल ज्ञानी है जिसने कर्म का त्याग किया है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, वो लोग स्थिर नहीं रह पाते, उनके पास फल की आसक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अनासक्ति फल में अनासक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि कर्म में फल नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करें, ऐसा सोचते हैं। भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि बिना फल के कर्म नहीं करते, और ज्ञानी लोग सोचते हैं कि कर्म फल के बिना हो नहीं सकता इसलिए कर्म का त्याग करो। बेबी थ्रोइंग द बेबी विद द बास्केट, ये प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस, बेबी को बास्केट को फेंकना था साथ में बेबी को भी फेंक दिया। प्रभुपाद इसको दूसरे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको आंख में कुछ कचरा गिरा है, अगर आंख में कोई खराबी है तो आप क्या करोगे, आंख फोड़ डालोगे। आप उसको ठीक करना चाहिए। ये मायावादी लोग क्या करते हैं, ये लोग कर्म को मिथ्या कहते हैं, कर्म माया कहते हैं, कर्म का त्याग करते हैं। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग देन करेक्ट इट, बट डजंट मीन दैट यू स्टॉप ऑल टुगेदर एवरीथिंग, इसका अर्थ ये नहीं। और ज्ञानी लोग ये कार्य करते हैं, सो दे फेस अ बिग डिफिकल्टी इन देयर अप्रोच। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म किया जाना चाहिए सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए कर्म होना चाहिए। विशेष करके अगर भक्तों को देखा जाए तो भक्त लोग जो कर्म करते हैं वो भी केवल भगवान की खुशी के लिए कर्म करना चाहिए, असक्त होकर के नहीं करना चाहिए कर्म फल का। ये बहुत मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं है बोलने का, इट्स सो सिंपल टू से, लेकिन अटैचमेंट का जो गांठ है नोट क्या बोलते हैं गांठ ग्रंथि, वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत कर्म ग्रंथि बहुत ही स्ट्रांग है, इसको टूटना इतना आसान नहीं है अटैचमेंट। तभी तो बोल रहे आपके 10 नाम अपराध में 10th ऑफेंस, कि इतना अगाध महिमा सुनने के पश्चात भौतिक विषयों में आसक्ति बनाए रखना, टेंथ ऑफेंस। इतना महिमा सुनने के पश्चात पूरा नाम अमृत पढ़ लेंगे। एक एक करके मुझे मिल मुझे बता रही थी कि प्रभु अभी नाम के ऊपर जितने भी सेमिनार्स है, बुक्स है, सब पढ़ती। आई से वेरी नाइस थिंग। लेकिन इतना कि इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के पश्चात भी अगर हमारी भौतिक आसक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती तो वो केवल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हुआ। इट्स नॉट रियलाइज नॉलेज, इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफरिंग, नथिंग एल्स। जैसे हम लोग कई बार अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो एक तरीका ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हो सारी, कि इसमें ये लिखा है, इसमें वो बताया, ये शास्त्र में ये कहा है, इसमें ये कहा है, भगवद गीता में ये कहा है। तो एक 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 अप्रोच हुआ ये इन्फॉर्मेशन वाला, यस वी गॉट दिस नॉलेज, पता पड़ गया। बट रियलाइजेशन में क्या होता है कि यू अप्लाई दिस, और फिर आप अप्लाई करने के बाद आप उसको कन्विंस होते उस चीज से, यस दिस इज करेक्ट, यही सही है, ये हमने अनुभव करके देखा है, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के साथ अगर आप किसी चीज को सीखते हो, व्हेन यू लर्न समथिंग विद द रियलाइजेशन, तो आपका क्या है, आपका लर्निंग गेट वाइड ओपन हो जाता है। इंफॉर्मेशन का लर्निंग गेट स्मॉल होता है, नैरो होता है। इन्फॉर्मेशन का क्या होता है कि जो मैं बता दिया आपने उसको पकड़ कर यू नो आपको आपके माइंड में डाल दिया, दैट इज इन्फॉर्मेशन ओनली। बट व्हेन यू ओपन योर रियलाइजेशन गेट, साक्षात्कार वाला आपका लर्निंग अप्रोच होता है, तो इसका परिणाम यह आएगा कि यू गो थ्रू इट प्रॉपरली, आप उसको ढंग से समझ पाएंगे। बोथ द वे इट्स गुड, बट द सेकंड इज बेटर।
एक क्वेश्चन
बोलिए,
जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज होता है वो मतलब इस जन्म में हमने लिया तो वो नेक्स्ट जन्म से हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज कंटिन्यू होता है वहीं से, तो ये जो आपने बोला कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला नॉलेज तो वो हमने इस जन्म में सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिया, तो वो नेक्स्ट जन्म में भी वो क्या हमें हमारे साथ रहेगा कि वो इसी जन्म?
जनरली आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज आप ट्राई करते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज का ही प्रभाव रहता है कि यू ऑलवेज ट्राई समथिंग, तो आपने जो रियलाइज किया है वही आपको नेक्स्ट लाइफ में प्राप्त होगा,
बाकी कुछ नहीं।
इन्फॉर्मेशन अगर भक्ति शास्त्र डिग्री होगी तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लाइफ में आपको डिग्री काम में नहीं आएगी, लेकिन आपने जो रियलाइज किया हुआ है, जो आपने आत्मसात किया है, जो आपने इसको अनुभव किया है, वो आपका रहेगा हमेशा आपके साथ।
जो नॉलेज हमने अपने में उतारा है वो नॉलेज हमारे साथ,
वो आपको भूलने पर भी भूल नहीं पाएंगे आप।
प्रैक्टिकली जो
आपका जैसे समझ लो कि आपने ये समझा है कि आप कृष्ण के दास है, अगर आपने ये समझ लिया राइट एंड यू आर कन्विंस विद दैट यस आई एम कृष्ण सर्वेंट, तो वो दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड यू कन्विंस विद दैट। ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव थिंग्स विल गिव यू बेटर ऑप्शन, बट दैट you know cannot, why you want to carry forward, keep it here, finish up, kya hame dusre janm mein jana kyun hai, isi janm ko acha solid bana karke bhagwat dham chale jao, seva karo, yeah
kisi ko keh diya maine to bhai hasne lage ho main kya agle janm nahi lena apne liye mujhe bhi apne kehne mein hansi aa gayi aur sach mein aukat kuch hai nahi soch rahe hain agla janm nahi lena
ha lekin प्रयास ऐसा ही होना चाहिए हमारा कि अगला जन्म नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप 100% का ट्राई करोगे तब जाके 80% आएगा आपको, अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम यू नो 100% का प्रयास करना ही पड़े। तो इसलिए अगर आपको अगला जन्म नहीं चाहिए ऐसा प्रयास करके करोगे तो कुछ तो अच्छा होगा। अगर दूसरा जन्म अगर आपको भक्त के घर में मिल सकता है इज वेरी मच पॉसिबल, बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप भगवान के बताए हुए संदेश या उनकी महिमा पर अविश्वास करो। जैसे कहीं ना कहीं किसी ने बताया कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद आपने एक बार लाइफ में खाया तो यू विल गो बैक ऑन बैक टू गॉड एट द एंड ऑफ लाइफ, तो इसमें आप महिमा का अविश्वास नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्प्रूव इट। ये नहीं कह सकते कि प्रसाद तो खा लिया लेकिन मेरा तो दूसरा जन्म होने ही वाला है। What do you mean? You are more stronger than Mahaprasad? अब महाप्रसाद ज्यादा स्ट्रांग हो? नहीं, जिस व्यक्ति मुझे मिला था वो मुझे बता रहा था कि आई एम सो फॉरन द चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मुझ पर काम नहीं कर सकती। मैं कहा भाई तुम तो बड़े भगवान बन गए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप पे काम नहीं कर सकती है, दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु इज लो एंड यू आर हाई, यू नो महाप्रभु से भी तुम ज्यादा शक्तिवान हो गए, मैं तुम इतने पतित हो कि महाप्रभु की कृपा भी आपको टकरा के वापस चली जाएगी। सो देयर इज अगेन इन अदर वर्ड्स पतित होने का अभिमान, पापी होने का अभिमान, तो ये अन्य प्रकार का अभिमान है, दिस इज चीटिंग, आपके माइंड का ट्रिक है, नथिंग एल्स, इट्स अ ट्रिक ऑफ माइंड, एंड दिस वे यू गिव अप कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस वे यू गिव अप चैतन्य कृपा, ये सोचकर आप चैतन्य कृपा छोड़ दोगे कि मैं इतना ज्यादा पापी हूं मुझ पर काम नहीं करेगी इसलिए मैंने कृपा लेना बंद कर दिया, क्यों अब मैं भोग विलास करूंगा, माया, दिस इज माया। हाँ वो ट्रिक है, इट्स ऑल ट्रिक, इट्स ऑल ट्रिक, माया के ट्रिक है, नथिंग एल्स।
विद्या का रूप धारण करके आती है तो उससे बचना बहुत कठिन
होता है, सेम थिंग। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था इस्कॉन को बाहर से कभी कोई खतरा नहीं है, इस्कॉन को खतरा है धोती कुर्ता पहनने वाले लोगों से, कि जो लोग माया के एजेंट भक्ति भक्त के रूप में आएंगे, भक्त के फॉर्म में, और वो इस्कॉन को बर्बाद करने में प्रयास करेंगे, दैट इज द वार्निंग वी हैव रिसीव्ड। बट द ओनली थिंग इज दैट कि हमें सैद्धांतिक रूप से कभी गलत नहीं समझना, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया इस बात को कि अगर कोई ये कहता है कि मैं बड़ा पापी हूं तो ये इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसका उद्धार नहीं हो सकता, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू कैन नॉट जस्ट यू नो। सो यहां पर बताया गया है कि वो इस प्रकार के कर्म क्यों करता है, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, वो साधक है वो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है और उस हिसाब से वो कर्म करता है, और सिद्धि की प्राप्ति क्या है वो टेक्स्ट नंबर 21 में बताया है, कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो।
एक तरह से ये भी देखा जाता है कि आइडियली मतलब भक्त को मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए मतलब ऐसी कामना करनी चाहिए कि वो जहां भी रहे वहां भगवान की सेवा,
सही बात है, सही बात है, यस, मुक्ति की कामना वो रिजेक्टेड है डिवोटीज के सामने।
मैंने एक्चुअली विष्णुमूर्ति प्रभु जो वाणी पीडिया फाउंडर है उनको एक बार ऐसा बोला था मतलब
अप्रिशिएटेड,
तो ही मतलब उन्होंने बोला कि आप मुझे मैंने क्या गलती होगी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं आई गेट दिस, बोल रहे
हैं यस दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय डिवोटी। अगर कोई भक्त कहता है कि मुझे एक भक्त से मैं जस्ट बात कर रहा था, दो भक्त बात कर रहे थे, तो एक भक्त ने ऐसा कहा कि अपना तो प्रभु जी हरि नाम लेंगे भगवान की सेवा करेंगे और इस जन्म के पश्चात भगवान अपनी सेवा में अपने बुला ले वैकुंठ में या बोलो वृंदावन में जो भी उनको ठीक लगे कहीं ना कहीं सेवा में रख दे, सो लाइफ इज सक्सेसफुल, इतना हमारे लिए बहुत है, मैं इतना तुच्छ हूं कि अगर इतनी कृपा हो जाए तो आई विल बी हैप्पी ऐसे। तो दूसरा भक्त था उसने रिप्लाई किया कि प्रभु मेरा तो ये आगे वाला लाइफ तो छोड़ो मेरा तो ये लाइफ भी बर्बाद हो गया है, तो उसने बोला क्यों कि उसने कहा कि मैं प्रभुपाद का सेवा करना चाहता हूँ और इस जन्म में नहीं करूंगा तो अगले जन्म में भी करना हुआ है, लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ, किसकी, मैं केवल प्रभुपाद की सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। बोले आपको वैकुंठ धाम में बोले वहां जाने के बाद भी मेरा मन नहीं संतुष्ट होगा, मेरा मन नहीं भरेगा, क्यों, क्योंकि मैं प्रभुपाद के मिशन को चैतन्य महाप्रभु के मिशन को जब तक मैं फैलाऊंगा नहीं, जब तक आदेश का पालन नहीं करूंगा, गुरु ने जो आज्ञा दिया वो पूरा नहीं करूंगा, तब तक मुझे वैकुंठ गोलोक धाम भी नहीं जाना है। ही वाज सो स्ट्रांग एंड ही वाज इट इज लाइक मैं जब सुन रहा था वो ही वाज सेइंग फ्रॉम द हार्ट, ऐसे वो गप्पे नहीं मार रहे थे दोनों बैठ करके, यू नो ही वाज सेइंग फ्रॉम द हार्ट एंड दैट द अदर डिवोटी ही वाज इम्प्रेस्ड, ही वाज सेइंग प्रभु ऐसा मूड अभी तक मेरे पास आया नहीं है, मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाया हूँ कृष्ण भक्ति में ऐसे। लेकिन द पॉइंट इज मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, भवतात भक्ति अहितुकित्व। द रियल मूड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रियल मूड एक ही है आपकी, जितना भी भक्ति शास्त्री व्यक्ति वैभव, ये तो सब हम शास्त्र को समझ रहे हैं सिस्टमैटिक रूप से, लेकिन ये तो भगवद गीता है ओनली, बट देन श्रीमद भागवतम है पूरा, फिर चैतन्य चरितामृत है पूरा, तो शास्त्र को समझ रहे हैं लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, आप चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद के मिशन की सेवा करो, सेवा सेवा आप मन से वाणी से कर्म से जिस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन सेवा करो, डोंट जस्ट बी आइडल, सेवा करो, दैट इज टेक्स्ट नंबर 21 में यही बात को बल दिया गया है।
ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है।
ऐसा व्यक्ति उसका मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में होता है और सब प्रकार की स्वामित्व की भावना का त्याग कर देता है, वो जानता है कि एकमात्र कृष्ण ही स्वामी है और उसका और कोई प्रभाव, एक छोटा सा पैराग्राफ है पढ़ी तात्पर्य का, ही मूव्स एग्जैक्टली लाइक अ पार्ट ऑफ अ मशीन, गॉट दैट, यंत्र का हिस्सा के रूप में, एज अ मशीन पार्ट रिक्वायर्स ऑयलिंग एंड क्लीनिंग फॉर मेंटेनेंस, सो कृष्ण कॉन्शियस मैन मेंटेन्स हिमसेल्फ by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietor even on his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object, For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reaction to his actions. तो यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो व्यक्ति निरंतर भगवान से एक मशीन की भांति, जैसे एक मशीन रॉबर्ट, जैसे मशीन मेरे सामने यहाँ पर है, मैं इसको कहूँ बटन दबाऊंगा ये काम करेगा, शट डाउन कर दूंगा शट डाउन हो जाएगा, इसको फॉर्मेट करूंगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, मशीन का अर्थ होता है कि बटन दबाओ काम करेगा, बटन दबाओ काम करेगा, दैट इज मशीन। तो प्रभुपाद यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि भक्त जो होता है भगवान का, वो बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है, किनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो ये नहीं सोचता कि मेरा भी अपना कुछ है, मेरा भी अपना कोई लाइफ है, सब कुछ अगर मैं भगवान को दूंगा, प्रभु आई वॉन्ट सम पर्सनल टाइम ऑल्सो, वॉट पर्सनल टाइम, पर्सनल टाइम क्या होता है, भक्त का कोई पर्सनल टाइम होता ही नहीं, भक्त तो पूरी तरह से कृष्ण को सोल्ड आउट एनिमल है। यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है पशु का, पशु का जो मालिक होता है पशु को जैसे नचाएगा वैसे नाचेगा, पशु जैसे बंदर होता है पालतू, उसको बोले खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नाचेगा, उसको भूख लगी है तो लाइक इट्स नॉट दैट ही हैज नो चॉइस, उसका कोई स्वतंत्रता नहीं है। दास का काम क्या है, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मिस्टर कृष्णदास रामदास, ऐसे दास का काम होता है कि वो केवल एक ही कार्य करता है कृष्ण के सिवा, कुछ नहीं करता है वो, नथिंग एल्स, वो पर्सनल खुशी के लिए, जब भी कोई कार्य पर्सनल खुशी के लिए किया जाता है, मेरे अपनी इच्छा से, मेरी अपनी निजी संतोष या स्वार्थ को या इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं है। मेरे कार्य का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे कार्य से कृष्ण प्रसन्न होते हैं या नहीं होते, अगर नहीं होते तो ये मेरे बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो दास होकर के भी अपने निजी स्वामित्व की भावना रखता है, जो दास होकर के भी जो निजी सुख का विचार करता है उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उसको तो जीवन जीने का कोई कोई हक ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जैसे प्रभुपाद बताया मशीन और एनिमल दोनों का एग्जाम्पल, यहाँ तक प्रभुपाद ने जानबूझ करके एक लाइन यहाँ पर एड भी किया है, ऑफकोर्स भगवान या कृष्ण के भक्त ऐसा करते नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अगर क्रूअल मास्टर पशु का स्वामी अगर वह हत्या भी कर देता है पशु की तो भी वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं। ऐसे चैतन्य शिक्षाष्टकम में है ना लास्ट में, आश्लिष्यवा पादरताम नष्ठुमा पादरताम पे नष्ठु, आप अपने पैरों के तले कुचल डालो, ऐसे यू आर गुड फॉर नथिंग। इफ कृष्ण सेज कि तुम किसी चीज के लिए योग्य नहीं हो, जस्ट गेट लॉस्ट, यू आर ऑफ नो यूज, तो पादरताम पिनष्ट हो, खच कुचल डाले, कब उद्धार होगा, हजारों हजारों जन्मों के बाद देखेंगे सोचेंगे। मत प्राणनाथ अस्तु सही बना, फिर भी कृष्ण आपके सिवा मेरा और कोई स्वामी नहीं है। आई थिंक आई गेव वन एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, यू नो रिमेम्बर जी महात्मा गांधी ने एक बार उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था, बहुत झगड़ा हो गया था, तो वो झगड़े में क्या हुआ कि उसके उसने पत्नी को बोल दिया गेट आउट, निकल जाओ घर से बाहर, तो डांट दिया दरवाजा खोल कर गए गेट आउट, बाहर बाहर उनको लेकर के दरवाजा बंद कर दिया अंदर से बाहर, तो उनकी जो पत्नी थी वो गेट के बाहर ही रोती रही, और फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने दरवाजा खोला तो खटखटाया उसने, तो दरवाजा खोला और तुम गई नहीं, मैंने बोला तुम चले जाओ, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आश्रय तो तुम हो, तुम गए आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ, है ना। तो फिर गांधी ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, सो प्रॉपर एग्जाम्पल दिया था, ये इसलिए एग्जाम्पल दिया था क्योंकि भगवान के भक्त का यही लक्षण होता है कि अगर कृष्ण को तिरस्कार भी कर दे फिर भी वो कृष्ण को छोड़कर जा नहीं सकता है, उसके हृदय में उतना ही प्रेम रहता है सेम। सो ये भक्त का लक्षण ये होना चाहिए कि मशीन को कभी कभी ऑयलिंग की आवश्यकता होती है, जैसे हेल्थ को ध्यान में रखना ये भक्तों का कर्तव्य है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भोग करना है, इसलिए क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा तो सेवा कर पाएगा, नहीं तो जो सेवा के बिना का जो शरीर है वो तो कोई काम का है ही नहीं। जो शरीर भगवान की सेवा नहीं कर सकता, जो शरीर भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा में उपयोग में नहीं आ सकता, वो शरीर को रख के फायदा भी क्या, वो सख्त वो शरीर तो केवल बोझा है ना, डूबते हुए आदमी के गले में अगर पत्थर की शिला लगा दी जाए वो व्यक्ति अधिक तेज डूबेगा, उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए उसका उसका मूल उद्देश्य एक ही रहता है कि अधिक से अधिक वो सेवा करना चाहता है, ये सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था इसको बोलते है, जस्ट वॉन्ट टू सर्व कृष्ण। आई मीन हम लोग बोलते हैं महामंत्र जप करते हैं तो प्रार्थना क्या होती है हमारी, मुझे सेवा दीजिए सेवा दीजिए सेवा दीजिए, होनी चाहिए आइडियली। आई नो कि इतना आसान नहीं है, जब माला जप करते हो 16 तो उतने 16 समय के लिए आई मीन डेढ़ घंटे के लिए यही भावना मन में स्थिर रखना इतना आसान नहीं है, कि आप डेढ़ घंटे तक एक ही बात को सोचते रहते हो, कृष्ण प्लीज मुझे आपकी सेवा में एंगेज कीजिए, आपकी सेवा में एंगेज कीजिए। लेकिन अगर आपने बोल भी दिया कि आपकी सेवा में एंगेज करो, लेकिन फिर जब सेवा का भावना होगा ही नहीं, चैंटिंग खत्म होने के बाद आप तुम अपने काम पे और भगवान अपने काम पे, दैट विल नेवर वर्क, उस तरह से वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो मतलब मैंने पर्सनली भी देखा है, हमारे फैमिली में भी और आपने भी काफी सब लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग ऐसे होते हैं उनके घर पे नजदीक में मतलब उनके फैमिली में कोई भी ऐसा मतलब अनिच्छनीय बना हो जाए, फिर वो भगवान से श्रद्धा एकदम उनकी उतर जाती है।
yes.
वो छोड़ देते हैं कि भगवान
कनिष्ठ।
हाँ, ये तो एकदम विपरीत है।
yes, कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ का श्रद्धा बहुत कोमल होता है। उसका श्रद्धा जो होता है कांच के बर्तन से भी कोमल होता है। वो दूध का जो फॉर्म होता है ना, वैसे उसको थोड़ा सा भी हाथ हड़ाओगे, थोड़ा हल्का सा झोंका आ जाएगा, उसकी श्रद्धा टूट जाती है भगवान। वो बहुत ज्यादा कनिष्ठ होते हैं इसलिए। लेकिन जो स्थिर होने वाले भक्त है, ये तो ऑफकोर्स ये अवस्था तो बड़ी उच्च प्रकार की अवस्था है, सिद्ध अवस्था बता रहे हम तो। असली सेवा पा तो महाप्रभु बता रहे हैं, दर्शनार्थ। लेकिन ये हमारा लक्ष्य है, हमें इस स्थिति तक पहुंचना है, क्योंकि जब सेवा की भावना इंटेंसिफाइड होती है ना, तब हम इतने व्यस्त रहते हैं, सेवा की भावना जब इंटेंसिफाइड होती है, फिर माया का प्रॉब्लम चला गया। नो प्रॉब्लम विथ माया। कई बार आप भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं हमें कि प्रभु जी, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, माया के प्रति आकर्षित हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे करना है, भगवान की सेवा ही करनी है, लेकिन फिर भी पता नहीं पड़ता कहाँ पर टाइम चला जाता है, कहाँ पर मैं माया का आकर्षण हो जाता है। इसका एकदम सिंपल लॉजिक है, जब हमारी सेवा की भावना उजागर होएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके पास समय का अभाव हो जाएगा, फिर माया को तो स्थान ही नहीं मिलेगा, समय का अभाव हो जाएगा। ये अवस्था होनी चाहिए आपके पास। आपकी सारी सेवाएं पेंडिंग लिस्ट पे पड़ी हो सकती है। ऐसा सेवा का जैसे आप समझ लो कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि सेवा भावना की कमी है, मन में ऐसा इच्छा नहीं है स्ट्रांग। इच्छा है लेकिन स्ट्रांग नहीं है कि सेवा करना है, ऐसा भगवान की सेवा में जुड़े। आप भी भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं, हम क्या क्या रहे? नहीं, सब इंद्रियों को लगाओ। अव्यर्थ काला तो हम एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ है, उसको लगाओ भगवान की सेवा में। इफ यू रिमेम्बर वंस, रिसेंटली निरंजन महाराज केम लास्ट ईयर, अहमदाबाद आए थे, आप में से कोई थे, निरंजन स्वामी आए थे यहाँ पर आपसे। तो निरंजन स्वामी आई थिंक मॉर्निंग लेक्चर दिए थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था, आई मीन जस्ट से शेयर एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग सर्विसेज का लिस्ट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये सेवा, ये समय मिलेगा तो ये सेवा करूंगा, ये ऐसे इतना पूरा प्लान इतना है कि ये जन्म का काफी नहीं है, ये जन्म में तो हो नहीं पाएगा ये सब। यू नो, इफ आई हैव शेयर विथ यू रिसेंटली, एक बार देवताका महाराज का वो जो एक मेजर ऑपरेशन था रिसेंटली, वो 24 घंटा चला था, मेजर लीवर ट्रांसप्लांट था, लीवर एंड किडनी बोथ ट्रांसप्लांट था। तो उस समय उसके अगले दिन या उसके आई थिंक उसके अगले दिन उन्होंने एक स्पीच दिया था, उसके अगले दिन या उसके दो तीन दिन पहले, देयर वाज अ स्पीच उन्होंने दिया था, या उसके शायद बाद में रिकवरी के बाद एक लेक्चर दिया था, बहुत सुपर लेक्चर, 20 मिनट ओनली, 20 मिनट्स, 25 मिनट का छोटा सा एड्रेस, बट वाज सो नाइस। उन्होंने पूरा प्लान बताया कि मैं इतनी इतनी चीज, 5-6 थिंग्स मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे ना क्या क्या करना चाहते हैं उनके लिस्ट में, यू नो व्हाट ही वांट्स टू डू, ही विल से व्हाट एज ए फुल, यू नो, बिग विजन, बहुत दूर दूर का सोचा हुआ है। वो इस सीजन में शायद होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, बट दैट इज ही डिसायर्ड दिस थिंग, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। सो दैट इज द वे ऑफ लाइफ। हम कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आपकी लाइफ का विजन होगा ना, विजन आगे का 10 साल, 20 साल, 25 साल का आगे का विजन होगा ना, तो ही मोटिवेशन आएगा, नहीं तो मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ आगे, दिशा तभी दिशा तय होगी। और दुर्भाग्य है कि 90% इवन डिवोटीज बिना विजन के ही काम करते हैं। उन्होंने एक कॉमन विजन बनाया है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, लेकिन वो विजन को कैसे अचीव करना उसका कोई प्लान नहीं है। प्रभु यही प्लान है, साधन भक्ति करो, नवदा भक्ति करो, नॉट दैट इमीडिएट एक्शन प्लान। तो हमें इस तरह से लौल्यम लौल्यम अभी तत्र मूल्यम लौल्यम अभी लोभ होना चाहिए, तभी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है, नहीं मिलता, जन्म जन्म को जन्म कोटि से अपलभ्य थे, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद किसी व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, करोड़ों जन्म के बाद ये इच्छा होती है कि मैं प्रभुपाद का सेवा करूं, मैं कृष्ण का सेवा करूं, एकदम से नहीं आता ये। और हम उसके एज पर आ गए, क्या आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आ गए, आपको ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जो आपको ये सिखा रहे हैं कि प्रभुपाद का सेवा, चैतन्य महाप्रभु का सेवा इज द बेस्ट, दैट्स द अल्टीमेट गोल, वी आर जस्ट नेक्स्ट टू इट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, सेवा की इच्छा, भावना, डिजायर फॉर सर्विस, दैट इज रिक्वायर्ड। और जन्म कोटि नहीं मिलता, ये चीज आपको संघ से प्राप्त हो सकता है, एसोसिएशन करने से मिल सकता है, क्या मिल सकता है, लौल्यम, लौल्यम लोभ, सेवा का लोभ मिल सकता है इस तरह से। तो ये हो, तब आपका, तब हमारा जो भक्ति हो जाएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, भाव भक्ति, समझे ना। भाव भक्ति में क्या होता है कि हमें मन को नहीं कहना पड़ता कि भगवान को प्रणाम करो, छोला माला का जप करो, साढ़े चार बजे मंगला में उठो, हमें नहीं बोलना पड़ता, बॉडी अपने आप उठ जाती है, सब अपने आप काम ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस काम करने लगता है, सब कुछ इस ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है पूरा। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम क्यों लिखी है कि हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन द बेस्ट थिंग इज वी शुड बी पाद पद्म धूली करी, द बेस्ट अचीवमेंट, लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट है कि कृष्ण के चरण कमलों में रहने वाले करोड़ों कण, चरण रज के जो कण है, करोड़ों रज के चरण रज के कण, उसमें से एक कण अगर हमें बना लिया जाए तो दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन ऑफ द लाइफ। पाद पद्म धूली, आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट सर्वेंट, वॉट ग्रेट सर्वेंट, सर्वेंट इज सर्वेंट, ऐसी कोई बिग सर्विस नहीं होती, सेवा कोई बिग नहीं होती, सब सेवा एक समान ही होती है, बिग सर्वेंट नहीं होता है, सब एक ही होता है, सर्वेंट ही होता है, सेवा करना ये इंपॉर्टेंट है, एंगेज व्हाट एवर योर कैपेसिटीज। सो हमारा प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम के विषय प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति आया था, एक भक्त है, प्रभुपाद प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, ऐसे सब बताया, आई एम वेरी फॉलन सोल, मैं बड़ा पतित आत्मा हूँ, प्रभुपाद को बता रहे, मैं बड़ा पतित आत्मा हूँ, बड़ा निम्न अधम हूँ, आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम प्रभुपाद, मेरा एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया, जब तुम बड़े नहीं हो तो तुम्हारी समस्या कैसे बड़ी हो सकती है। प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम एक तुच्छ आत्मा हो, खुद अभी बता रहे हो कि बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ, जब तुम खुद ही बड़े नहीं हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी बड़ी हो सकती है। यू डोंट हैव अ बिग प्रॉब्लम, द बिग प्रॉब्लम इज दैट यू हैव अ बिग प्राइड, तुम्हारा बड़ी समस्या एक ही हमारी कि हमें अहंकार प्रचुर मात्रा में भरा है, ईगो प्राइड ये प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। सो इसलिए सर्विस सब एक समान होती है, लेकिन सर्विस को रेंडर करना ये इम्पोर्टेंट है, क्या सेवा कर रहे हो दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट सर्विस कर रहे हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हो, दैट इज व्हाट सिन, ये देखा जाएगा। सो अभी और एक श्लोक है कंटिन्यूस में, जिसमें इसी बात का बल दिया गया है, पढ़िए।
जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं।
अनदर वेरी एडवांस पोजिशन। क्या लिखा है इसमें, कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप से जो आता है उसको प्राप्त कर लेते हैं अयाचक, लाइक माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी अयाचक थे, अभिमान के वश नहीं कि भाई मैं क्यों भीख मांगूंगा, भगवान को रक्षा करने तो करेंगे, ऐसा नॉट दैट वे। वो इतने भी निर्भर थे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण आपको मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, यू नो मैं तो आपका भजन करूंगा, आई विल चैंट सर। तो आप वो सेवा कर रहे थे और वृंदावन में, तो कृष्ण देखे कि ये व्यक्ति यू नो स्पिरिचुअली अटैच है मुझमें, मेरे सेवा कुछ सोचता नहीं है, मटेरियल डिटैच टोटली, कोई लाभ यू नो। स्पिरिचुअली अटैच का ऑटोमेटिक अर्थ होता है मटेरियल डिटैच। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि स्पिरिचुअली ऑल्सो अटैच एंड मटेरियली ऑल्सो अटैच। अगर ऐसा होता है तो डिस्प्रूव हो गया ऑटोमेटिक, इज नॉट स्पिरिचुअली अटैच। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि स्पिरिचुअली अटैच, तो उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेटली इज मटेरियली डिटैच टोटली। ये उसका प्रमाण है कि उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जो कोई स्पिरिचुअली अटैच ऐसा कोई होता है आध्यात्मिक रूप से आ सकता भगवान में, तो वो भक्त कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है हमेशा, और ऐसा भक्त बहुत ही स्वीट होता है, इट बिकम्स वेरी स्वीट टू कृष्ण। वो स्वीट इसलिए बन जाते हैं भगवान के लिए कि कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं उनसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट कृष्ण बाय सर्विस, यू नो हमारी सेवा से भगवान को, परम भगवान कृष्ण का मन को जीतना, कृष्ण को आकर्षित करना वेरी डिफिकल्ट। बट दिस पर्सन एंड दिस काइंड ऑफ डिवोटी जो इस श्लोक में बताया है, ही कैन अट्रैक्ट कृष्ण स्माइल, सच अ स्वीट डिवोटी लाइक माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने वो यू नो द स्टोरी गोपाल, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज दैट स्टोरी इन ब्रीफ, दैट गोपाल ने देखा कि, तो कृष्ण ने देखा कि ये माधवेंद्रपुरी कई दिनों से खाया नहीं है, इज वेरी हंग्री। तो वहां से गुजर रहे थे, ये वहीं के बाद है गोवर्धन के पास, गोवर्धन के पास कृष्ण देखे, तो कृष्ण वहां पर आए। कृष्ण ने कहा कि बाबा लगता है कि आप बहुत भूखे हो, मैं तुम्हारे दूध लेके आया हूं। तो माधवेंद्रपुरी सोचे तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूं, तो हंसने लगे, बहुत सुंदर बालक था, बोले कि वह हमारे गांव की जो महिलाएं है वो यहां से गुजरती है। तो वो उन्होंने बता दिया कि बाबा है यहाँ पर, लगता है कि उन्होंने कई दिनों से खाया नहीं लगता है, तो मैं सोचा आपके लिए दूध लेके आऊं, खीर दूध लेके आए माधवेंद्रपुर, बहुत ऐसा दूध जो गोलोक का होता है, इधर का तो था ही नहीं, कृष्ण लेके आए थे वो, तो बड़ा स्वादिष्ट स्वाभाविक मीठा था, शक्कर डाला हुआ नहीं था, स्वाभाविक मीठा था और खुशबू वाला था, वो भी स्वाभाविक रूप से, वो खुशबू कहां से आती थी, भगवान की आती थी, कृष्ण की कृपा से खुशबू वाला दूध था, थोड़ा सा वो था क्या बोलते हैं थिक वाला उबाला हुआ थिक ऐसा दूध था, तो बड़ा स्वादिष्ट दूध। तो माधवेंद्रपुरी पी गए और बाद में फिर कृष्ण उनको हल्का सा जब किया गई, तो आधी रात में आप कभी गोविंद कुंड देखा है, आजकल तो गोविंद कुंड के माधवेंद्रपुरी का बैठक है ना वहां पर, किसी ने देखा है गोविंद कुंड के पास, गोविंद कुंड देखा है किसी ने, गोविंद कुंड देखा है, तो गोविंद कुंड और गोवर्धन के बीच में माधवेंद्रपुरी का बैठक है, बिल्कुल गोवर्धन को छू करके, और वहां पर स्ट्रीट लाइट अभी भी नहीं है, आई मीन ऑफ कोर्स गोवर्धन, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय रात के अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वहां पर माधवेंद्रपुरी बैठकर जप कर रहे थे, और रात को भगवान सपने में आए, कहा उनको कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ, मुझे उठ यहाँ से निकालो, मंदिर वगैरह की स्थापना करो। सो इस प्रकार के भक्त थे वो माधवेंद्र पुरी, अयाचक, कभी कुछ मांगते नहीं थे। सो जो जो अपने आप आता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो अच्छे बुरे से पर है, डू नॉट एनवी। अच्छे बुरे से पर का अर्थ क्या होता है कि हमारी हमारी लाइफ में हम क्या देखते हैं, एवरी नाउ एंड देन, हर एक सेकंड में ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है बुरा है, ये आदमी अच्छा है वो आदमी बुरा है, ये चीज अच्छा है ये चीज बुरा है, ये मसाला अच्छा है ये मसाला बुरा है, ये घर अच्छा है ये घर बुरा है, ऐसे एवरी मिनट एवरी सेकंड वी आर थिंकिंग लाइक दिस, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन ये ड्यूअलिटी से माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल हमने दिया, ये भक्त जो होता है वो इससे पर होता है, ही नोज एवरीथिंग इज कृष्णस प्रॉपर्टी। और एनवी से, डू नॉट एनवी और डज नॉट एनवी, वो ईर्ष्या नहीं करता किसी की, ईर्ष्या करने जैसे कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पर क्या ईर्ष्या करेगा कोई। एंड हु इज टेलिंग बोथ सक्सेस एंड फेलियर, वो सफलता में और विफलता में समान रहता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कोई आज दीक्षा ले लिया आपने, प्रभु आपने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे पता पड़ा है जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा के पश्चात भी विफलता आ सकती है। आप माधवेंद्रपुरी जी इतने महान भक्त अगर बन भी जाते हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो जाए कोई भी तो भी विफलता आ सकती है। इट्स नॉट अ बिग एग्जाम्पल। चैतन्य महाप्रभु ये सोच करके वृंदावन जाने के लिए निकले थे, चैतन्य चैतन्य का वर्णन है, होल्ड इट, आई थॉट दिस, सो चैतन्य आप वृंदावन जाने के लिए निकले थे, अभी कोई कहेगा जब महाप्रभु इच्छा किया तो पूरा होगा ही, चैतन्य महाप्रभु इच्छा करे वो पूरा ना हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का इच्छा प्लान बना कर गए थे, वहां पर राम के लिए में गए, राम के लिए में इतने हजार लोग देखा, रूप सनातन चरण में गिरे, रूप सनातन कुछ सारा डिस्कशन सब खत्म हो गया, शरणागति ले ली, सब जाते समय रूप सनातन ने कहा, सनातन को समय जाते समय रूप को समय कहा, प्रभु अगर आप वृंदावन जाना चाहते हो तो वृंदावन जाने का ये परिपाटी नहीं है, इतने सारे लोगों को वृंदावन, इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन जाना ये उचित नहीं है, बस इतना ही काम, फिर आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप जो चाहो कर सो। और महाप्रभु उस समय तो ठीक है कर दिया, रूप सनातन को फिर रात को सोचा उस पर, रूप सनातन ने जो कहा है उसके ऊपर, और नेक्स्ट मॉर्निंग प्लान चेंज कर दिया कि वृंदावन नहीं जाएंगे, है ना, वापिस आ गए। सो व्हाट दैट मीन, महाप्रभु वॉज करेक्टेड बाय हिज डिसाइपल एंड ही चेंज द प्लान। सो इसका अर्थ यह होता कि यू कैन नॉट चेंज द प्लान, यू कैन चेंज द प्लान, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द प्लान। द पॉइंट इज कि अगर किसी को कभी विफलता भी आती है तो उसको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमा, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अगर आपको विफलता भी प्राप्त हो रही है तो इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है। चैतन्य महाप्रभु ने यही सोचा था कि मे बी कृष्ण वॉन्ट्स दिस थिंग, शायद कृष्ण ऐसा चाहते हैं। मेनी टाइम प्रभुपाद आल्सो सेड द सेम थिंग, मे बी कृष्ण वॉन्ट्स दिस थिंग, इसलिए तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमा। सो डोंट फाइट विथ कृष्ण, डोंट स्ट्रगल विथ कृष्णस डिजायर। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, यू नो द श्लोक राइट, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, जो भी आता है भगवान की कृपा है, मुंजान अवाद मकृति विपाकम, उसको आप स्वीकार कर लो ये सोच करके कृष्ण की कृपा है और मेरे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है, मुझे तो इससे अधिक प्राप्त होने का था, लेकिन मुझे कृपा करके कम दे दिया। एक वपुबीर विदधन नमस्ते, और ये सोच करके सेवा करते रहो कि एक दिन तो अवश्य कृष्ण की कृपा मुझ पे होगी। इस तरह से ऋग वाग वपु, ऋग में से हृदय, वाग वाणी, वपु शरीर, तो मन वचन और शरीर से कृष्ण की सेवा में अपने आप को जोड़ देता है ये सोच करके, है ना। उस व्यक्ति को भक्ति ऑटोमेटिक प्राप्त होती है, ऑटोमेटिक, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू हिम। दिस इज द आइडिया, दिस इज द प्लान ऑफ द थ्योरी। यू एक्सेप्ट एवरी सिंगल थिंग एज कृष्णस मर्सी, नो कंप्लेंट कृष्ण, ऑल ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कृष्ण, यू आर सो काइंड टू मी, दैट इज द आइडिया। एंड देन व्हाट एवर यू हैव ऑफर इट टू कृष्ण, जो कुछ आपके पास है उसको कृष्ण की सेवा में अर्पित करो। Somebody sent me one Prabhupada audio. Prabhupada, जिसमें Prabhupada कह रहे हैं, एक example का, it's very famous, बहुत viral हो गया सब जगह। उसमें Prabhupada कहते हैं कि कृष्ण वॉट एवर आई हैव वेरी इनसिग्निफिकेंट, मेरे पास बहुत तुच्छ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुच्छ हूँ, जो कुछ है मेरे पास मैं आपके चरण में रख रहा हूँ, कृपा कर, आप कृपा लो, आप उसको कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, मेरे पास कुछ है नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, बट वॉट एवर आई हैव आई एम गिविंग इट टू यू, सो प्लीज एक्सेप्ट इट। Prabhupada इज टॉकिंग वेरी इमोशनली, जिसमें Prabhupada रो रहे, ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है कि Prabhupada रो रहे,
वो रिकॉर्डेड है, मतलब जो जो ट्रांसक्राइब्ड है उसमें भी लिखा हुआ है डिवोटीज
में, डिवोटीज लिखा है कि Prabhupada स्टार्टेड क्राइंग, Prabhupada रोने लगे, क्या बोल करके, केवल यही बात बता रहे थे कि मेरे पास जो कुछ है उसको आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, दैट इज द मूड। सो इसको हमें कल्टिवेट करना है, बट आई थिंक वी हैव डिस्कस अलॉट इन दिस 3 श्लोकस, बट आई मीन दिस आर गुड सिम्टम्स, सो आई आगे वाले श्लोकों को हम तेजी से बढ़ा पाएंगे आगे। सो 25 कौन सा था, ये 23 से 33 तक के अलग अलग यज्ञों का वर्णन आता है ज्ञान की कंटिन्यूएशन में, अलग अलग यज्ञ की कोई स्वाध्याय यज्ञ का पालन करता है, कोई प्राण की आहुति, अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात है। यज्ञ एक्चुअली यज्ञ का सेक्रीफाइस अर्थ ही नहीं होता, ओनली यज्ञ का अर्थ होता है यहाँ पर मेथड है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो कुछ लोग प्राणायाम करके अष्टांग योग का करते, कोई वर्णाश्रम का फॉलो करके, कोई ज्ञान की प्राप्ति करके, ऐसे अलग अलग मार्ग प्रभु भगवान बताते हैं, लेकिन अंत में बता देते हैं भगवान कि ये सभी मार्ग से उत्तम है कृष्ण भक्ति का मार्ग, और फिर आता है ज्ञान प्राप्ति का मेथड, तद्वित द्विपणि पाते ना, इस तरह से तुम ज्ञान की प्राप्ति करो, दैट वी कैन टेक नेक्स्ट टाइम, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग दिस टुडे, वी हैव टेकन वेरी लेस, ओनली 3 श्लोकस, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी कैन कंटिन्यू टू टेक 20 श्लोकस, ट्राई टू कवर इट ऑफ। थैंक यू वेरी मच, वी स्टॉप हियर बिकॉज टाइम एंड फाइव हियर।